نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. الحمد لله ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان قریب ہے. آج جمادی الثانی کی 26 تاریخ اور اس کے بعد کون سا مہینہ آئے گا؟ رجب. اس کے بعد کون سا آئے گا؟ اور اس کے بعد پھر تو اس تاریخ کے مطابق آج سے 2 مہینے 6 دن کے بعد انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک ہوگا. رمضان کا مہینہ الحمدللہ ہر سال کی طرح جب بھی آتا ہے تو کچھ لوگ بہت پیار سے اس کا استقبال کر رہے ہوتے ہیں, کچھ انتظار کر رہے ہوتے ہیں. کچھ انتظار تو کرتے ہیں لیکن ساتھ کچھ اندیشے ہوتے ہیں, اور وجہ کیا ہے کہ رمضان کی روٹین بہت فرق ہوتی ہے. تو آئیے آپ کو کچھ ٹپس دینا چاہتی ہوں, دو طرح سے. پہلی ٹپس جو ہوں گی وہ جسمانی تیاری ہے, کیونکہ دیکھیے جب بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ایک دم جب روٹین چینج ہوتی ہے, فوڈ سائیکل چینج ہو جاتا ہے, سونے جاگنے کا ٹائم چینج ہوتا ہے, تو بعض دفعہ پھر ہم اس کی برکتوں سے محروم ہو جاتے ہیں یا ہم اس سے اتنا فائدہ نہیں لے سکتے. تو ہمیں ابھی سے, کیونکہ جو کام تیاری کے ساتھ کیا جائے وہ اچھا ہوتا ہے. میں اس بات کو اس طرح سے کہنے والی ہوں کہ جیسے آپ دیکھیے کہ شادی قریب آ رہی ہو تو کیا شادی والے دن اس کی تیاری شروع کرتے ہیں؟ نہیں. ہم تو 2 مہینے کیا 6 مہینے بلکہ 1 سال پہلے سے ذہنی طور پہ تیار ہوتے ہیں, پھر ہوتے ہوتے بالآخر ہم ایک وقت پہ ایکشن لے لیتے ہیں. اور جب شادی کا دن ہوتا ہے اسے 1-2 دن پہلے بڑے ریلیکس ہو کے بیٹھ جانا چاہیے کہ الحمدللہ تیاریاں پوری کر چکے ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ بالکل اسی طرح سے ہمیں رمضان کے آنے سے پہلے ہی رمضان کی تیاری کر لینی چاہیے. اور وہ کیسے کر لیں؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے, اگر ہم اس کو کھانے پینے کی نظر سے دیکھ لیں تو وہ کیا ہے کہ ہمیں ابھی سے ہی اپنی ایٹنگ ہیبٹس کو چینج کرنا چاہیے. دیکھیے ایک ہوگی سڈن چینج, آج کھایا 4 دفعہ تو کل روزہ آ گیا تو کھایا ہم نے تقریباً 1 یا 1.5 دفعہ, تو پھر تو سر میں درد بھی ہونا ہے, مائیگرین بھی ہونا ہے, شوگر بازی بھی لو ہوں گی اور بلڈ پریشر بھائی بھی ہائی ہوں گے, ہوگا نا. ابھی سے سلولی اپنی فوڈ کو کم کرتے جائیں. کس طرح سے کریں؟ نمبر 1, بریک فاسٹ کا ٹائم پیچھے لیتے جائیں. عموماً گھروں میں بریک فاسٹ 8 سے 9 کے ان بٹوین ہوتا ہے, سم ٹائم بچوں کے اسکول جانے کے حساب سے 7 سے 8 کے بیچ میں بھی لوگ کر سکتے ہیں. تو آپ کیا کریں, 15 منٹ پیچھے کرتے جائیں. یعنی ایوری ڈے آپ فجر پڑھتے ہیں نا تو اس کے ساتھ ہی پیچھے سے اگر بیکورڈلی آتے ہیں نا تو آپ اپنے بریک فاسٹ کے ٹائم کو تھوڑا سا جلدی کر دیں. فجر پڑھیں, قرآن پڑھیں, دعائیں کر کے اس کے بعد ناشتہ کر کے پھر دوسرے کام شروع کریں. اس سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جو چیز آپ نے رمضان میں عموماً کھانی ہوتی ہے ابھی سے ہی باڈی کو اس کا یوز شروع کر دیں. یعنی آپ یہ سوچ لیں کہ ہمارے روزے آگے, جہاں بھی توڑنا پڑا توڑ دیں گے, وہاں چوائس نہیں رہتی, ابھی تو چوائس موجود ہے نا, تو ایکسٹرا کھانے کو چھوڑ دیں. اس میں ایک آپ کے لیے ٹپ کیا ہے, سنیکنگ چھوڑ دیں آج سے. اب آپ ایک دم چھوڑیں گے تو اب ہوشی نہ ہو جائیں, تھوڑا تھوڑا کر کے چھوڑیں. ہمیں اکثر ہر وقت چٹ چیٹ کی عادت ہوتی ہے, کٹ کیٹ کی عادت ہوتی ہے, منہ چلانے کی عادت ہوتی ہے نا, تو اب آہستہ آہستہ شعوری طور پہ ان بٹوین دا 2 میلز کچھ نہ کھائیں. اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ جب روزہ ہوگا تو عادت ہی نہیں ہوگی. اور الحمدللہ میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں کہ جو کھانے کی ٹیبل سے ایک دفعہ اٹھ جائیں صحیح, اس کے بعد نہ کھانا ہے تو نہ پینا ہے. تب ہی کھانا یا پینا, جب دوبارہ بیٹھنا ہے چاہے 8 یا 10 گھنٹے بعد یا 11-12 بجے بیٹھے, بیچ میں کچھ کھانا ہی نہیں پینا بھی نہیں, تو آپ بتائیے ان کے لیے پھر روزے کیا بڑی بات ہوں گی. ٹھیک ہے. پھر اگلی چیز کیا ہے, ریڈیوس کافی انٹیک. کچھ لوگوں کا مسئلہ روزے میں سب سے بڑا کیا ہوتا ہے, چائے کے بغیر نہیں رہ سکتے, کافی کی عادت ہے. موسٹلی لوگوں کو روزہ رکھ کے سر میں درد ہوتا ہے, تو آپ ابھی سے ہی چائے کے اگر 3 کپ پیتے تھے تو 2.5 کر دیجئے, 2.5 پیتے تھے تو 2 کریں, کیونکہ اس میں عموماً دیکھیے کیفین ہوتی ہے, تو باڈی کو جب ایک دم نہیں دیں گے تو پھر اس دن تو روزہ لگے گا. اور پہلے دن نہیں لگنا ہے تو ہم نے اگلا رکھنا ہی نہیں ہے, نہیں جی میں تو بیمار ہو گئی اور ومن کان امن کو مریدن, پھر روزہ تو چھوڑ ہی سکتے ہیں. تو آہستہ آہستہ اپنی باڈی کو یوز کیجئے. پھر ایک اور چیز جو ویسے تو اچھی نہیں ہے لیکن کچھ لوگوں کے روزہ نہ رکھنے کے رستے کی ایک بہت بڑی چیز اسموکنگ ہوتی ہے. یعنی بعض سسٹرز ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ سگریٹ سے روزہ کھولتے ہیں, पानी दो ना दो, खजूर दो ना दो, जूस दो ना दो, लेकिन उन्होंने अंदर जाकर सिगरेट सुलगाना जरूरी है क्योंकि उनका सिस्टम सारा खराब हुआ है। तो सिगरेट पीने वालों ने जब रमजान में एक दिन पहले सिगरेट छोड़ा तो फिर तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी ना। तो फिर चलिए जिनको छोड़ना है, और ये बेस्ट टाइम है अभी से ही। आप दिन में चार पीते थे तो साढ़े तीन, साढ़े तीन तो तीन, साढ़े ढाई करके आप शाबान के महीने में इंशाल्लाह वैसे ही क्विट कर चुके होंगे। रात दिन में भी पीते थे तो ऐसा ऐसा दिन छोड़ चुके होंगे। तो फिर इसके बाद अगला काम उनकी बीवियों को करा लेना चाहिए कि वो बाकी भी छोड़ दें, राइट। तो बहरहाल जो भी चीज़ की आदत डाली हुई है ना, उसको अभी से रिड्यूस करते जाएं। फिर एक और बहुत ही खूबसूरत टिप होगी आपके लिए, वो क्या है कि नफिल रोज़े अब से लेकर, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या थी कि शाबान में सबसे ज़्यादा रोज़े रखते थे। मुझे समझ नहीं आती इस बात की क्यों, पहले नहीं आती थी, अब तो आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सोचती थी पहले आगे जाके इतने जो रखने हैं तो शाबान में क्यों रखते हैं। इंशाल्लाह अब आपको आज डेट तो मेरा नहीं ख्याल ये बता रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट दर्स हमारा शाबान पे होगा और इन्हीं डेट्स के अराउंड होगा। आपको पता है ये वन समन जो दर्स है, तो शाबान के लेक्चर में भी हम बहुत कुछ इंशाल्लाह डिस्कवर करेंगे। लेकिन यह है कि नबी सल्लम शाबान में कसरत से रोज़े रखते थे। उसमें क्या होता है, नंबर एक छुटे हुए रोज़े। आपके मेरे अगर कोई इस साल के छुटे हुए रोज़े थे तो शाबान का महीना उसकी डेडलाइन है, रख लीजिए, अदरवाइज फिर कफारा भी देना पड़ता है। तो अपने छुटे हुए रोज़े रख लें। फिर दूसरी बात है कि चले पीर और जुमेरात के रोज़े रखने शुरू करें। मोस्टली जैसे अभी यहाँ भी मौसम अच्छा है, ठंडा है, तो आप लोग महीने के तीन रोज़े रख लें। यानी अभी से वो कहना चाहिए कि नफली रोज़े रख रख के खुद को आजमाएं कि मैं रख सकती हूँ कि नहीं रख सकती हूँ। फिर इसी तरह एक और बहुत ही जो बड़ा प्रॉब्लम होता है हमारी हेल्थ वाइज रमज़ान में, वो क्या है कि हमारी नींद नहीं पूरी होती। तो इसके लिए एक टिप नोट करें, और वो क्या है कि अभी से अपनी नींद को रेगुलेट करें, सोने और जागने को उस तरह कर लीजिए जो कि रमज़ान में होना है। मसला अगर आप रात को पूरी ज़्यादा वक़्त नहीं सो सकते थे तो फिर दिन में सोना पड़ता है, तो फिर अभी से दिन में सोने की आदत डालें। कई लोग हैं वो चूंकि दिन में नहीं सोते ना, फिर रोज़ा रख के भी नहीं सोते और वो खुद भी बड़बड़ देख रहे होते हैं और दूसरों को भी जगा रहे होते हैं। तो रोज़ा रख के ख़ासतौर पर आपको होता है कि यूरोप में और स्पेशली नॉर्वे में तो दिन इस तरह का होता है ना कि आपको बीच में सोना चाहिए कुछ टाइम। तो अभी से अपने रमज़ान के मुतवक्को यानी एक्सपेक्टेड टाइम को सामने रख कर अपने जिस्म को दिन में थोड़ा सा सोने की आदत डाल लीजिए। और सेम थिंग, सहरी पे उठना मुश्किल लगता है तो अभी से उस वक्त पे उठना शुरू कर दें, और किसी दिन उस वक्त उठ के बनाएं स्मूदी, फिर देखिए कैसे सारे उठ के बैठते हैं। आप कहेंगे स्मूदी कौन पीता है, पी के देखें आप सुबह उठ के, खाली पेट जब आपके अंदर स्मूदी जाएगी ना, आप बाकी स्मूद हो जाएंगे, क्योंकि वो बेस्ट एक नेचुरल डाइट होती है। कोई ऐसी चीज़ मतलब आप देखिए, ओट मील है, फ्रेश ओट मील है, अगर आपको गर्म खाने का शौक है, जिसको पाकिस्तान में हम दलिया कहते हैं, मेरा नहीं ख्याल उससे मज़े की भी कोई चीज़ होगी नाश्ते में सुबह के वक्त जब दिल ना कर रहा हो, तो आप अभी से रिलैक्सली ऐसी चीज़ों को लेना शुरू कर दें कि जिसको रमज़ान में आप लें तो आपको बिल्कुल एकदम ये ना महसूस हो कि आपके लिए ये चीज़ें मुश्किल है। फिर इसी तरह से आप देखिए एक और चीज़ है रमज़ान के लिए, आप अगर तैयार कर रहे हैं ना अपने आप को, तो एक दफ़ा रमज़ान से पहले थॉरली अपना चेकअप करवा लें। डॉक्टर आपकी जो भी हैं यहाँ पाकिस्तान में, जहाँ भी लोगों के पास हर जगह ही होते हैं, तो आप चेक कर लीजिए कि अगर आपको अल्लाह ना करे किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है, फूड के ज़रिए उसको पूरा करें। मैं नहीं कहती कि आप जान की गोलियाँ खाएं, आप पालक खा लें, लेकिन यह है कि जिस तरह से भी करना, यानी अपनी बॉडी को फिजिकली रेगुलेट करें। मुझे एक सिस्टर की बात याद आती है हमेशा, प्लान हुआ कि वहाँ दौरे कुरान होगा, एक दो तीन साल पहले की बात है, तो एक सिस्टर ने अपनी शेयरिंग सुनाई थी कि किसी जगह दर्स में जाते आते चीज़ें उठा के उनको उठ सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ा तो बहुत सांस फूल गया। तो कहने लगी कि मैंने ये सोचा कि आज मेरा इतना सांस फूल रहा है तो फिर जब उस्ताजा आएंगी, दौरे कुरान होगा, फिर तो हम बहुत भाग दौड़ करेंगे, तो मेरा सांस फूलेगा तो मैं तो काम नहीं कर सकूंगी, तो लेट मी क्या करूँ, मुझे आई विल रिड्यूस माई वेट। तो उन्होंने डाइट शुरू कर दी और अच्छा खासा वेट उन्होंने लूज किया हुआ था रमज़ान तक। किस शौक में कि मैंने भाग भाग के काम करना है। तो हम होते हैं तो पर्चा ही लिख देते जी मैं डिसेबल हूँ, मुझसे ना उम्मीद रखना मैं डब्बा भी उठाऊंगी, मेरा तो सांस ही बड़ा फूलता है। जो काम बंदा करना चाहता है अल्लाह उसे करा लेता है, ये मेरा ईमान है। आप याद रखिए कि मुझे आपको नेकियों की जो एनर्जी मिलती है ना, ये आप जो मैं जुमला कह रही हूँ मैं इसको फिर बोलती हूँ, क्योंकि ये हम में से बहुत सारों को मेरे समेत फ़ायदा देगा। नेकी से जो एनर्जी मिलती है वो बड़ी बड़ी दवाइयों से ज्यादा इफेक्टिव होती है, बेहतरीन खाने खानों से भी ज्यादा फायदा देती है। कई घंटे सोने से जो हमारे जिस्म को सुकून और रिलैक्सेशन मिलता है, उससे भी ज्यादा बड़ा फायदा हमें कब होता है, जिससे हम अपने आप को नेकी में लेके आते हैं। आजमा के देख लें नेकी की ताकत, उसकी एनर्जी, उसके अंदर से जो पोटेंशियल मिलता है वो इंसान को बहुत ज्यादा फायदा देता है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि एक और चीज जिसको आप अपनी जिंदगी में ला सकते हैं कि अपने जहन को तैयार करें। मैंने रखना रोजा, कोई कहता है मैं हार्ट पेशेंट हूं, रख के देखिए, अभी रख लें, खोल दीजिए, 12 बजे खाना खा लें आप, कोई बात नहीं। जब सुबह आप नाश्ता करेंगे ना, कल से आप आजमा लीजिए, तो रोजे की नियत कर लें, जहां तक निब सपा नहीं खाऊंगी। मिसाल है कि लंच ले लेते थे 12 बजे, तो आप 1 बजे ले लें, उधर से ड्यूरेशन बढ़ाते जाएं, और फिर जिसे पीर और जुमेरात होगा फजर के लिए उठें तो खा लें, कुछ नियत कर लें, नाश्ता उस दिन फजर से पहले कर लें, और सोचें रख सकी निभा सकी तो निभा लूंगी रोजा, नहीं हुआ तो जब भी खाना हुआ खा लूं। आप देखिएगा कि खेल खेल में आप अपने आप को बहुत सारी दूसरी चीजों में लेकर चले जाएंगी इंशाल्लाह। फिर इसी तरह देखिए फिजिकली जो भी चीजें हम करते हैं ना, इसमें तो हमारे जहन को हम मेंटली प्रिपेयर करते हैं, लेकिन जो दूसरी चीज है ना वो स्पिरिचुअल है। क्या मैं महरूम रह जाऊंगी? मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस सुनाती हूँ कि मैंने किसी बहुत यंग को बैठ के नमाज पढ़ते देखा, यानी वो सजदे में नहीं जा रही थी, तो मैंने उस दर्द को इतना अपने दिल में महसूस किया कि ये सजदे में नहीं जा रही, को इनके घुटने का शायद मसला होगा या कोई रीजन होती है। ये अलग बात है कि कुछ लोग मैं देखे वैसे भाग दौड़ के काम कर रहे होते हैं, और जब नमाज पढ़ेंगे तो खड़े हो जाएंगे और झुकेंगे नहीं, हालांकि ऐसी कोई चीज नहीं है। अभी चंद दिन पहले किसी ने एक वीडियो भेजी तो मैं हैरान हो गई कि उसमें कोई नॉन मुस्लिम थी, यानी वाइट थी सिस्टर, तो वो बता रही थी पोजीशंस के साथ, और वो मुस्लिम्स के बारे में बता रहे थे, ये शायद बीबीसी पे न्यूज आई है या किसी चैनल पे, सीएनएन पे, कि मुस्लिम्स जो रुकू करते हैं और जो सजदा करते हैं तो ये बॉडी के लिए कितना अहम है। उन्होंने दुनिया पूरी को दिखा दिया कि मुस्लिम्स के ये करने की वजह से इनकी एक फिजिकली यानी एक्सरसाइज हो जाती है। असल बात यह है कि आप खुश रहें। फिर इसी तरह से आप देखिए कि रमज़ान से पहले अगर हम रमज़ान की तैयारी इस तरह करें कि अपने आप को खुद यकीन दिलाएं कि आज मैं हूँ, शायद मैं रमज़ान तक ना रहूँ, नियत तो कर लीजिए, अभी पूरी नियतें कर लें, सारे रोज़े रखने हैं, पूरी तरावियाँ पढ़नी है, मैंने रोज़ का एक सपारा भी पढ़ना है, मैंने दौरे कुरान भी सुनना, नियत करें। हमने इधर ही वो सबक में पढ़ा है ना कि नियत कर लें नेकी की तो अजर मिल जाता है, और फिर बाद में कर सके ना कर सके नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन आपको मुझे नियत का अजर है। तो आप सब इस वक्त ये अपने आप से नियत करें कि मैंने इस साल पूरे रोजे रखने हैं, मैंने कोई इबादत नहीं छोड़नी, और मैंने भाग भाग के काम करना है, बल्कि बड़ी बड़ी नियतें कर लें। अब आप कहेंगे ये झूठ नहीं है, अंदर से इरादा कोई नहीं है लेकिन हम नियत करें, नहीं ये झूठ नहीं है। आप खुद को कहें अल्लाह तू मुझसे करवा, तू मुझसे ये नेकी ले ले, ये कर वो कर। फिर उसके बाद एक और चीज जो हमें नेकियों के मौके से फायदा कैसे उठा सकती है, अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, जो खुलासा है आपकी बात का, एक नेकी दूसरी नेकी को लेकर आती है और एक गुना दूसरी गुना को ले जाता है। अभी से ही वॉच योर सेल्फ, मेरा कुछ देखना, यानी कोई आप अपनी आंखों से कोई वीडियो देख रहे हैं, कोई फिल्में हैं ऐसी, कोई ऐसी चीज़ है, कोई मॉडलिंग है, कोई ऐसी चीज़ है जो शायद आपसे तौफीक छीन ले रोज़ों में फ़ायदा लेने की, रिड्यूस इट। अपने हर गुना को इस तरह सोचें कि शायद ये गुना है जिसने मेरा रोज़ा तोड़वा देना फलां दिन, ये नेकी करूँगी तो मेरे अंदर नेकी आएगी। यानी अभी से ही अपने माइंड को इस तरीके से सेट करें कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं ये लेके चलूँ। फिर एक और टिप ये है आपके भी और मेरे लिए भी, इस पूरे साल में यानी पिछले शवाल से लेकर आज तक मेरे अपने क्लोज सर्कट में, यानी जिसमें मेरी फैमिली है, जिसमें मेरे फ्रेंड्स जानने आने वाले हैं, कौन दुनिया से चला गया उनके नाम लिखे। याद है मुझे अपनी एक बहुत प्यारी ममानी याद आ जाती है फौरन ही, खड़े खड़े उनकी डेथ हुई, खड़े खड़े, कोई सोच भी नहीं सकता था वो इतनी जल्दी जाएंगे, और क्वाइट यंग थी, तो हमें अभी भी यकीन नहीं आता कि वो जा सकती हैं दुनिया से, ऐसी जिंदा उनकी पर्सनैलिटी थी, हंसने बोलने वाली, यानी लवली सी सिस्टर थी वो, तो ऐसे गई हैं कि जैसे बिलीव मी के एकदम भाग से बिजली चली जाती है। तो उनको नहीं पता था कि ये रमज़ान मेरी जिंदगी का आखिरी रमज़ान है। तो उस लिस्ट के नीचे सपोज्ड जस्ट इमेजिनरी अपना नाम लिख लें। आज की डेट है अभी 2 महीने 6 दिन है तकरीबन, शायद इन 2 महीने 6 दिन में पत्ता कट जाए, क्या पता। तो आप अपने लिए ये सोचें, मैं भी सोचूं कि ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान है। इंशाल्लाह इससे आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा, अपने आप को इस बात का यकीन दिलाएं कि ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान है। अभी से ही रमज़ान के लिए प्लानिंग करें, मैंने अपने इस रमज़ान को कैसे अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन रमज़ान बनाना। कल अपनी एक क्लास के दौरान मैंने उनको बताया था कि आपको पता है कि रमज़ान का मैसेज क्या है। मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी, पैगाम क्या है रमज़ान का? वेट लूज़ कर लो, डाइटिंग, खाना कम खाओ, गरीबी रोज़े रखते हैं। अब मैं एक जुमला बोलूँगी, फिर आप उस पे परख के देखिएगा कि ये सच है। रमज़ान का पैगाम क्या है? बे आराम होना सीखो। बेआराम ही होते हैं ना, सोने के वक्त में जाग जाओ। रूटीन तोड़ने का नाम है रमज़ान। जब नहीं खाना को दिल चाहे तो खाओ, कैसे माएँ कहती हैं खाओ, खुद मुंह में ठोंसती हैं, बच्चे नहीं खाते, आंखें बंद होती हैं फिर भी मुंह खोलती हैं उनके। और जब बहुत भूख लगी होती कहती नहीं खाना। हर चीज़ में अब देखिए रमज़ान हमारी रूटीन तोड़ता है। तो आप और मैं इस सबक को आज ही नज़र में रख लें कि ये जो मैं आपको हम आप अक्सर कहते इट डजंट सूट्स मी, ये मुझे सूट नहीं करता, नहीं आई कैंट, इस आदत को अवॉइड करें। आपकी मेरी ट्रेनिंग होगी रमज़ान में कि तुम्हें जो सूट करता है जो नहीं करता वो नहीं करना, तुमने वो करना है जो तुम्हें सूट नहीं करता। मैं कहती हूँ सिर्फ इस एक असूल और क्राइटेरियन पे अगर आज से ही आप और मैं अपने मामूलात को रेगुलेट करना शुरू कर दें तो आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि हमारा ये रमज़ान कितना खूबसूरत होगा। तो खुलासा यही है कि रमज़ान अब दूर नहीं है। एक तारा बल नासी हिसाब हम व हम फी गफलत मोरिदून, अल्लाह ताला कहते हैं इंसान की तो मौत बड़ी करीब है, क़यामत बड़ी करीब है, तो फिर रमज़ान तो उससे भी पहले आने वाला है। मैं आपके लिए भी और अपने लिए भी यही दुआ करूँगी कि हमें बेहतरीन तैयारी करने वाला बनाए। चंद सवाल पूछिए अपने आप से, इसी पर आज का मेरा ये सेशन पूरा होता है। क्या मैं रमज़ान के लिए तैयार हूँ? क्या मेरे घर के माहौल को देखकर लग रहा है कि रमज़ान आने वाला है? जैसे शादी आने वाली हो तो क्या हो रहा होता है, ईद आने वाली हो तो क्या हो रहा होता है, मेहमान आने वाले हो तो क्या हो रहा होता है, ये आप सब जानते हैं। तो अपनी घर की रूटीन चेंज करें। इसमें आपको एक टिप देती हूँ कि अब अपने बच्चों के साथ अपने मियाँ के साथ अक्सर घर में रमज़ान का तस्करा करें, और अच्छा करें, बुरा नहीं करें, डराने वाला नहीं, डरने वाला भी नहीं, प्यार वाला। जैसे किसी अपने मनपसंद मेहमान के आने के मौके पर हम दिन गिन रहे होते हैं, उल्टी गिनती बच्चे गिनते हैं, नानों के आने में इतने दिन रह गए हैं, खाला के आने में इतने दिन रह गए हैं, और पुप्पो के जाने में इतने दिन रह गए हैं। तो बहरहाल जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।